بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتاؤں، آج کے کارکرم کا شبھ آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ آراف کی 180 سے 183 تک کی آیتوں سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری علی اصغر برومند۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وَأُمْلِي لَهُمْ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم انہیں کے دوارا اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے وشے میں کٹلتا گرہن کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا پھل وہ جلد پائیں گے، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گٹ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حق کے ساتھ مارگ دکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا हम उन्हें इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता जहन्नम में ले जाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं उन्हें ढील देता हूँ, निसंदेह मेरी चाल दृढ़ है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। फेसबुक पर हमारा पेज है facebook.com/irib हिंदी। और अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 00989035065492। श्रोताओ, आज शनिवार है, आज़र मास की 15, रबीउ सानी की 19 और दिसंबर की 5 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लीजिए। हमेशा की तरह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे, फिर आप सुनेंगे राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान भ्रमण, और हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा नया सवेरा। अब आप रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान के बारे में जबान खुलने से पहले यूरोपीय देश नस्ल भेद और समझौते के उल्लंघन से बाज रहे। तेहरान ने कहा है कि IAEA ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदार है। ईरान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 12,000 नए मामले सामने आए, जबकि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भारत की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, जबकि किसान अपनी इसी मांग पर डटे हुए हैं। और अब आप हसन अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री ने परमाणु समझौते के बारे में जर्मन विदेश मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया प्रकट की है। विदेश मंत्री ने कहा है कि परमाणु समझौते के यूरोपीय सदस्य को ईरान की वचनबद्धता पर जबान खोलने से पहले परमाणु समझौते का उल्लंघन और पर्शियन गल्फ में दुष्टतापूर्ण व्यवहार से बाज आना चाहिए। विदेश मंत्री जरीफ ने शुक्रवार की रात ट्वीट किया कि हाइकोमास और यूरोप के 3 देशों अर्थात जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस को ईरान की ओर से उठाए गए कदमों पर बात करने से पहले कोरोना के संदर्भ में घृणित नस्ल भेद, परमाणु समझौते के उल्लंघन और पर्शियन गल्फ के पश्चिमी देशों को $100 अरब के हथियारों की बिक्री तथा इसराइल के आतंकवादी कदमों के अंधे समर्थन सहित पर्शियन गल्फ में अपनी दुष्टतापूर्ण कार्रवाइयों से बाज रहना चाहिए। विदेश मंत्री ने इसी तरह इन तीनों देशों से मांग की है कि वे सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 2231 के तहत अपने वचनों का पालन करें। जर्मनी के विदेश मंत्री ने इस ट्वीट से कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस के सुर में सुर मिलाते हुए कहा था कि जर्मनी ईरान के साथ अधिक व्यापक परमाणु समझौते को लाने के प्रयास में है, क्योंकि वर्तमान परमाणु समझौता पर्याप्त नहीं है। याद रहे कि जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने 8 मई सन 2018 को अमरीका के परमाणु समझौते से निकल जाने के बाद वचन दिया था कि ईरान के आर्थिक हितों की रक्षा करके इस समझौते की सुरक्षा करेंगे, लेकिन इन देशों ने अमेरिका के इस कदम के खिलाफ बयान देने के अलावा समझौते को बचाने के लिए व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं किया। विदेश मंत्री ने फारस की खाड़ी में कुवैत की ओर से सहमति के ऐलान का स्वागत करते हुए आशा प्रकट की है कि ये सुलह इलाके के राष्ट्रों के लिए स्थिरता, राजनीतिक व आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। मोहम्मद जवाद जरीफ ने एक ट्वीट करके कहा है कि ईरान कुवैत की ओर से घोषित सहमति का स्वागत करता है और क्षेत्रीय वार्ता तथा इच्छा पड़ोस अच्छा पड़ोस ईरान की पुरानी नीति रही है। कुवैत के उप विदेश मंत्री खालिद जारुल्ला ने शुक्रवार की रात कहा था कि कतर और सऊदी अरब के बीच संकट खत्म हो चुका है और दोनों देशों के बीच सहमति को अंतिम रूप दिया जा चुका है। खालिद जारुल्ला ने कहा कि मतभेदों को समाप्त करने और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का कार्यक्रम शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी ने भी एक ट्वीट करके फारस की खाड़ी के तटवर्ती देशों के विवादों को खत्म करने के लिए कुवैत की कोशिशों की सराहना करते हुए कहा है कि कुवैत का रुख पर्शियन गल्फ के तटवर्ती देशों के बीच विवाद के अंत के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है। सऊदी अरब और कतर के बीच विवाद खत्म होने का ऐलान सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान की ओर से इस घोषणा के कुछ घंटे बाद किया गया कि कतर के साथ संकट के समाधान के मामले में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। कतर के विदेश मंत्री ने कहा कि इस संकट का समाधान व्यापक होना चाहिए और इससे फारस की खाड़ी में एकता बनी रहनी चाहिए। सऊदी अरब और उसके घटकों यानी मिस्र, यूएई और बहरीन ने 5 जून 2017 को कतर से अपने सारे संबंध तोड़ लिए थे और उसके साथ सभी वायु, जल और थल सीमाएं बंद कर दी थीं। वियना में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ईरान के प्रतिनिधि ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में आईएईए की गुप्त रिपोर्ट के लीक होने पर कड़ी प्रतिक्रिया प्रकट की है। काजिम गरीबाबादी ने ट्वीट किया है कि आईएईए को चाहिए कि गोपनीयता की अपनी व्यवस्था को इस्तेमाल करे और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो परिवर्तनों की ताज़ा जानकारी प्राप्त करे बल्कि मेजबान देश की गुप्त सूचनाओं की सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। उन्होंने ये बयान शुक्रवार को पश्चिमी संचार माध्यमों में प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट के बाद दिया है कि आईएईए ने सदस्य देशों को बताया है कि ईरान अपने नतंज परमाणु प्रतिष्ठान में आधुनिक सेंट्रीफ्यूज IR-2M की अधिक संख्या लगाने का इरादा रखता है। ये पहली बार नहीं है जब परमाणु ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की ओर से खुफिया रिपोर्ट मीडिया में आ गई है। इससे पहले भी रूस के प्रतिनिधि ने भी आईएईए की खुफिया रिपोर्टों के मीडिया में प्रकाशन पर कड़ी आपत्ति जताई थी। पश्चिमी मीडिया में यह खबर ईरान की संसद द्वारा प्रतिबंधों के अंत के लिए एक महत्वपूर्ण कानून को पारित किए जाने के कुछ ही समय बाद सामने आई। इस कानून के अनुसार अगर एक महीने के भीतर ईरान के खिलाफ लगे प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो ईरान पूरक प्रोटोकॉल के स्वेच्छा से पालन का सिलसिला खत्म कर देगा और 3 महीने के भीतर 1000 IR-2M सेंट्रीफ्यूज मशीन लगाकर संवर्धन का काम शुरू कर देगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 12,000 नए मामले सामने आए जबकि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर सीमा सादात लारी ने शनिवार को देश में कोरोना के ताजा आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,151 नए मामले सामने आए जिनमें से 1,562 मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया जबकि बाकी अन्य को आवश्यक निर्देशों के साथ होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अब ईरान में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 10,28,986 हो गई है। प्रवक्ता ने बताया कि अब तक देश में 7,19,708 लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ईरान में 321 लोगों की कोरोना के घातक वायरस से संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। डॉक्टर सीमा सादात लारी ने बताया कि अब देश में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 50,016 हो गई है। इस बीच पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,60,00,000 से ज्यादा हो चुकी है जिनमें से 15,26,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है जबकि 4,60,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हरा चुके हैं। ये समाचार आपकी सेवा में रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता जबकि आंदोलन कर रहे किसान अपनी इसी मांग पर डटे हुए हैं। भारत में कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन शनिवार को 10वें दिन भी जारी रहा और सरकार से किसान संगठनों की 5वें दौर की वार्ता भी हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ सरकार के अन्य प्रतिनिधि किसानों के साथ बैठक में मौजूद रहे। किसानों को संबोधित करते हुए भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीनों कानूनों को पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता लेकिन सरकार किसानों के सुझावों पर विचार करने, बातचीत करने और संशोधन करने के लिए तैयार है। इस पर किसान नेताओं ने कहा कि वे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बल देकर कहा कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। केंद्र की ओर से वार्ता की अगुवाई कर रहे तोमर ने कहा कि सरकार किसान नेताओं के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती। सरकार से बातचीत के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि हमारे पास एक साल की सामग्री है और अगर सरकार चाहती है कि हम सड़कों पर रहें तो हमें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कॉरपोरेट फार्मिंग नहीं चाहते। इन कानूनों से किसानों को नहीं सरकार को फायदा होगा। इससे पहले आंदोलन कर रहे किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया था और चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे राष्ट्रीय राजधानी की तरफ जाने वाली सड़कों को बंद कर देंगे। लेबनान के हिजबुल्ला आंदोलन ने कहा है कि वो उन सभी नेताओं और संचार माध्यमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा जिन्होंने बैरूत धमाके का आरोप उस पर लगाया था। हिजबुल्ला के सांसद इब्राहिम अल मूसवी ने बैरूत में पत्रकारों से एक वार्ता में कहा कि कई न्यूज वेबसाइटों ने बैरूत बंदरगाह के धमाके का आरोप हिजबुल्लाह पर लगाया था जबकि इसका कोई आधार या सबूत नहीं था, जो निश्चित रूप से शर्मनाक और आलोचनीय है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तबाही और हिजबुल्लाह से व्यक्तिगत लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। लेबनान की सुरक्षा करने वाले प्रतिरोध के मोर्चे की सच्चाई को इसराइल भी स्वीकार करता है। हिजबुल्लाह के सांसद ने कहा कि एक धड़ा है जो सुनियोजित रूप से हिजबुल्लाह को बदनाम करने के लिए काम कर रहा है। हिजबुल्लाह के सांसद इब्राहिम अल मूसवी ने कहा कि लेबनान में विवाद का बीज बोने वाली कई न्यूज वेबसाइटों, लेबनान के पूर्व सांसद फारस सम और लेबनानी सेना की वेबसाइट के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है और हमारे पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। याद रहे कि 4 अगस्त को बैरूत बंदरगाह में होने वाले भयानक धमाके में लगभग 191 लोग मारे गए थे और 6,000 से अधिक घायल हुए थे जबकि पूरी बंदरगाह लगभग तबाह हो गई थी। रूस ने पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के टीके लगाने का काम शुरू कर दिया है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक कोविड-19 की वैक्सीनेशन का काम राजधानी मॉस्को से शुरू किया गया है। इस शहर के 70 क्लिनिकों को रूस की बनी हुई कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले चरण में ये वैक्सीन डॉक्टरों व चिकित्सा विभाग के लोगों को और इसी तरह सामाजिक सेवा के कर्मचारियों को दी जा रही है क्योंकि उन्हें कोविड-19 के संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है। रूसी अधिकारियों ने बताया है कि वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले ही घंटे में 5,000 लोगों ने इसके लिए अपना नाम लिखवाया है। रूस की बनी हुई कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 का टीका लगवाने के लिए अधिकतम आयु 60 साल है। इसी तरह गर्भवती महिलाएं और पिछले 2 हफ्तों के दौरान सांस की समस्या से जूझने वाले लोग भी स्पुतनिक 5 का टीका नहीं लगवा सकते। रूस के विदेश मंत्री ने सीरिया के खिलाफ अमरीका और यूरोप के नए प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए सीरिया में अमरीकी सैनिकों की उपस्थिति को गैरकानूनी और इस देश की एकजुटता की राह में रुकावट बताया है। सरगेई लावरोफ ने एक भाषण में कहा कि भयानक युद्ध से जीवित बच जाने वाले दसियों लाख सीरियाई नागरिकों के लिए उचित जीवन के हालात बनाना इस समय सबसे अहम मुद्दा है और इसके लिए विश्व समुदाय का सहयोग जरूरी है। रूसी विदेश मंत्री ने कोरोना के दौरान सीरिया के खिलाफ अमरीका और यूरोप के नए प्रतिबंधों और बिना किसी सबूत के सीरिया पर रासायनिक हथियारों के प्रयोग के उनके आरोपों का भी उल्लेख किया। अमेरिका की फेडरल अदालत के जज ने अपने फैसले में ट्रंप प्रशासन को आदेश दिया है कि प्रवासियों की मदद के लिए बनाए गए ड्रीम एक्ट पर पुनः अमल शुरू करे। ड्रीमर्स कार्यक्रम ओबामा प्रशासन ने शुरू किया था जिसके तहत गैर कानूनी रूप से अमेरिका पहुंचने वाले शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मदद की जाती थी। ट्रंप ने सन 2017 में इस कार्यक्रम पर अमल रोक दिया था। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन की अदालत के जज निकोलस गेरोविस ने अमरीकी प्रशासन से कहा है कि वो प्रवासियों को इस कार्यक्रम के तहत अपना पंजीकरण कराने की अनुमति दे। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
यह तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोतो, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, सऊदी अरब ने 26 मार्च 2015 से यमन के खिलाफ अपना पार्श्विक हमला आरंभ कर रखा है, जिसमें अब तक 10,000 यमनी घायल व हताहत हो चुके हैं। हताहत होने वालों में ध्यान योग्य संख्या बच्चों और महिलाओं की है। सवाल ये पैदा होता है कि हमले सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना आज तक कैसे जारी है। अभी हाल ही में इसराइल ने 5 दिवसीय युद्धाभ्यास किया था, जिसमें आधुनिकतम राडारों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन विमानों का प्रयोग किया गया था। इसराइली इस युद्धाभ्यास पर बड़े खुश थे, परंतु हिजबुल्लाह के ड्रोन ने युद्धाभ्यास के स्थल पर जाकर उसके ऊपर से वीडियो बनाई और उसकी भनक भी इसराइलियों को नहीं लगी।
احد زعماء الاسرائيليين يقول
بھارت نینتت کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے مہا سچیو علی ساگر نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے جو ادھیکار چھینے گئے ہیں انہیں واپس لانے کے لیے پریاس جاری رہیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دلی کی کیندر سرکار نے جو بھی قانون کشمیر کے لیے بنائے ہیں وہ جن ورودھی ہیں۔
بھارتیہ جنتا پارٹی لاکھ انکار کرے، ان کی قیادت لاکھ انکار کرے، ظلم و ستم کرے، لوگوں کو ڈرائیں، دھمکائیں، لیکن یہ کچھ یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہے۔
श्रोताओ, सऊदी अरब ने 26 मार्च 2015 से यमन के खिलाफ अपना पार्श्विक हमला आरंभ कर रखा है, जिसमें अब तक 10,000 यमनी घायल व हताहत हो चुके हैं। हताहत होने वालों में ध्यान योग्य संख्या बच्चों और महिलाओं की है। सवाल ये पैदा होता है कि ये हमले सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना आज तक कैसे जारी हैं? उसका एक जवाब यह है कि सऊदी अरब को मानवाधिकारों की सुरक्षा का दम भरने वाले देशों का आशीर्वाद प्राप्त है, और यही देश सऊदी अरब को हथियार भी दे रहे हैं, और उन्हीं हथियारों से सऊदी अरब निर्दोष यमनियों का जनसंहार कर रहा है। आमिर शुजाई की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही कायम रिजवी।
जर्मनी की उच्च अदालत ने अमेरिकी ड्रोन हमले में मरने वाले यमनी परिवार की शिकायत को रद्द कर दिया है। अमेरिका के ड्रोन हमलों का दिशा निर्देशन पश्चिमी जर्मनी से होता है। वर्ष 2015 में जब से सऊदी अरब ने यमन पर हमला आरंभ किया है, तब से अमेरिकी ड्रोन भी यमनी जनता के खिलाफ लगातार हमले करते रहे हैं, परंतु अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान इस अपराध में जर्मनी की भूमिका पर पर्दा डाला था। ओबामा ने कहा था कि हम ड्रोन विमानों को उड़ाने के लिए जर्मनी का प्रयोग नहीं करते। ये ऐसी स्थिति में है कि जब क्षेत्र में मौजूद अमरीकी छावनी में ड्रोन तैयार थे और जर्मनी से उनका दिशा निर्देशन था। अपने कामों से बुरी तरह शर्मिंदा होकर पछताने वाले एक अमरीकी सैनिक ब्राडोन ब्राइंट का कहना है, मैंने वायुसेना छोड़ने का फैसला किया क्योंकि अपने काम के सही न होने के बारे में मुझे संदेह था। वे मानवाधिकारों की उपेक्षा करते थे, हम इंसानों की हत्या के उपकरण बन गए थे। जर्मनी की उच्च अदालत में यमनी नागरिकों की हत्या का मामला उठाने का कारण
राइनर ब्राउन फाले हुकूक बशर मिगुयाद
मानवाधिकार कार्यकर्ता ब्राउन के अनुसार, मेरे हिसाब से जर्मन सरकार को माफ करना था। दूसरी वजह यह है कि चूंकि इस देश के संविधान के अनुसार कोई भी युद्ध जर्मनी की भूमि से नहीं होना चाहिए, इसलिए इस आदेश से सरकार को निर्दोष बताए जाने का प्रयास किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार जर्मनी की राइस्टाइन छावनी की अमरीकी ड्रोन हमलों के दिशा निर्देशन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो यमन के आम नागरिकों का जनसंहार हो या फिर इराक में प्रतिरोध के महानायकों की हत्या। मानवाधिकार कार्यकर्ता जर्मनी में अमरीकी छावनी और वहां से आम नागरिकों की हत्या के लिए ड्रोनों के दिशा निर्देशन पर आपत्ति जता चुके हैं। इन आपत्तियों को जर्मनी की अदालत ने रद्द कर दिया और उसे जर्मन सरकार की उपेक्षा का अब सामना है। बर्लिन से IRIB के लिए आमिर शुजाई की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
श्रोताओं, अभी हाल ही में इसराइल ने 5 दिवसीय युद्ध अभ्यास किया था, जिसमें आधुनिकतम राडारों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन विमानों का प्रयोग किया गया था। इसराइली इस युद्ध अभ्यास पर बड़े खुश थे, परंतु हिजबुल्लाह के ड्रोन युद्ध अभ्यास के स्थल पर जाकर उसके ऊपर से वीडियो बनाई और उसकी भनक भी इसराइली सैनिकों को नहीं लगी। हसन अजीम जादे की रिपोर्ट पेश करें, साथी रविश जैदी।
2020 में ज़ायोनी शासन ने अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के अल जलील क्षेत्र में बड़ा सैन्य अभ्यास किया, परंतु हिजबुल्लाह के ड्रोन विमानों ने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये 5 दिवसीय सैन्य अभ्यास था, जिसका नाम था मौत की अंतिम गोली। इस सैन्य अभ्यास का एक लक्ष्य अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के बाहर से आने वाले ड्रोनों को रोकना था। इस सैन्य अभ्यास में इसराइल के आधुनिकतम राडारों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन विमानों ने भाग लिया।
احد زعماء الاسرائيليين يقول
एक ज़ायोनी कमांडर ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन से ली गई तस्वीरों ने युद्ध अभ्यास के रंग को फीका कर दिया। मेरे विचार में ज़ायोनियों के ऑपरेशन की भी तस्वीरें हैं कि हिजबुल्लाह के कमांडरों ने उन्हें प्रकाशित नहीं करना चाहा। यह हिजबुल्लाह की शक्ति का मात्र एक छोटा सा भाग था। हिजबुल्लाह का ड्रोन अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के अल जलील क्षेत्र में गया, किंतु इसराइली ड्रोनों को उसकी भनक नहीं लगी और वो सुरक्षित लेबनान लौट आया। इससे पहले इस सुरंग और हिजबुल्लाह के ड्रोन की तस्वीरों का प्रकाशन जहां इसराइली अधिकारियों के क्रोध का कारण बना, वहीं ज़ायोनी अतिक्रमण के मुकाबले में हिजबुल्लाह की शक्ति में वृद्धि लेबनानी लोगों की खुशी का कारण बना।
WhatsApp, Instagram, YouTube।
इस महिला का कहना है YouTube, WhatsApp और Instagram पर ये तस्वीरें बड़ी तेजी से वायरल हुई हैं। हिजबुल्लाह की शक्ति में वृद्धि ज़ायोनियों के भय और हमारी सुरक्षा का कारण है। इससे पहले पिछले साल हिजबुल्लाह ने आवीविन कार्यवाही के बाद जो विदित में शहीद ज़बीबुल ज़ाहिर का प्रतिशोध लेने के लिए की गई, आवीविन की तस्वीरें प्रकाशित करके सिद्ध कर दिया है कि वो शहीदों के खून का बदला लेने और इसराइली अतिक्रमण का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बैरूत से IRIB के लिए हसन अजीम जादे की रिपोर्ट।
भारत नियंत्रित कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली सागर ने कहा कि कश्मीरियों के जो अधिकार छीने गए उन्हें वापस लाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की केंद्र सरकार ने जो भी कानून कश्मीर के लिए बनाए हैं वो जन विरोधी हैं। पूरी जानकारी के साथ श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि उनका दल कश्मीर के जो विशेष अख्तियार छीने गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। श्रीनगर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 115वीं जन्मदिन के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए इसके नेताओं ने इस पर बल दिया। इसके तुरंत बाद महासचिव अली मोहम्मद सागर ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि नई दिल्ली के मौजूदा प्रशासन ने जो भी कानून पार्लियामेंट से लाए वो जनता विरोधी है। उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पहले ही सूचित किया था। उन्होंने कहा कि अब हम पीपल्स अलायंस के नाम से एकजुट हैं और एकजुट होकर हम अपना अभियान चला रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि वो जो भी हमारे हकूक छीने गए हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। उन्होंने तरह तरह के आरोप भाजपा पे लगाए।
ये मेंबरशिप तमाम रियासत में जाएगी और जो हमने मेंबरशिप की थी पिछले 4 साल पहले उससे बहुत दुगना हो जाएगी। आज जो डिमांड आ रही है तमाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से तो इंशाल्लाह वो चलेंगे। आज शेर कश्मीर का जन्मदिन है, ये कहना बहुत ही ज़रूरी है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को गुलामी की जंजीरों और बर्दारी सूदकारी से आज़ाद कर दिया। तालीम यहाँ नहीं थी, तालीम का एक दौर शुरू किया और आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारे उनके जो जनरेशन पिछले 3 जनरेशन हैं उसके लिए शेर कश्मीर ने काम किया। आज हमारी खुद मुख्तारी को छीन कर भारतीय जनता पार्टी ने जो पार्लियामेंट में एक कानून लाया, शेर कश्मीर ने पहले ही बताया है कि लोग आपकी खुद मुख्तारी पर हमला करेंगे, दाएं से बाएं से आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप में इतिहाद होना चाहिए। آج ہماری وائس کو ڈیسینٹرلائز کیا جا رہا ہے, فریجائل بنایا جا رہا ہے, کمزور بنایا جا رہا ہے. سوپور میں ایک لیڈر ہے, اننت ناگ میں دوسرا لیڈر ہے, سری نگر میں تیسرا لیڈر ہے, تاکہ جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز کمزور ہو جائے. شیخ صاحب نے ہمیشہ کہا اتحاد اتفاق کی بات کی, آج اس بات کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کو سراہنا کر دیں, آج ہر کوئی مبارکباد دیتا ہے قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو کہ اس نے پیپلز الائنس بنایا. ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے یا آپس میں رائیول بنانے کے بجائے ہم ایک سٹیج پہ جمع ہو جائیں اور اس چیز کو حاصل کریں جو چیز ہم سے چھینی گئی ہے. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں جو مادہ ہے, جو جذبہ ہے, وہ ساتھ لے کر ہم انشاءاللہ, ہمیں پوری امید ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی لاکھ انکار کرے, ان کی قیادت لاکھ انکار کرے, ظلم و ستم کرے, لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں, لیکن یہ کچھ یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہے.
اس بیچ نئی دہلی میں ایک بار پھر کسانوں اور پرشاسن کے بیچ جو وارتا ہوئی ہے اس کے ابھی تک پرینام تو نہیں نکلے ہیں, پرنتو دکھ رہا ہے کہ نئی دہلی کی موجودہ پرشاسن قانونوں میں تبدیلی لانے کے لیے تیار ہو چکی ہے. پرنتو کسانوں کا ماننا ہے کہ جب تک تمام ان قانونوں کو واپس نہیں لیا جاتا ہے تب تک وہ اپنا ابھیان جاری رکھیں گے. سبت محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز. شروتاؤ, ہماری سبھا کا انتیم کاریکرم ہوگا نیا سویرا, پر اس سے پہلے آپ سنیے دوسرا ساپتاہک کاریکرم ایران بھرمڑ.
ایران بھرمڑ.
دوستو, کاریکرم ایران بھرمڑ کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں. اس کاریکرم میں ہم تربتی حیدریہ کے بارے میں چرچا کریں گے. مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے.
دوستو, ایران بھرمڑ کاریکرم شرنکھلا کے انترگت ہم آپ کو خراسان رضوی پرانت کے کچھ نگروں کے بارے میں بتا چکے ہیں. آج ہم اسی پرانت کے ایک انیہ نگر تربت حیدریہ کے بارے میں بتائیں گے جو زعفران یا کیسر کی پیداوار کا کیندر ہے. تربت حیدریہ ضلع پورا میں تائباد, تربت جام اور رشت خار سے پشچمی کاشمر, اتر میں مشہد, نیشاپور اور فریمان تتا دکشن میں میویلات سے گھرا ہے. تربت حیدریہ نگر مشہد سے 145 کلومیٹر اور راجدھانی تہران سے 1005 کلومیٹر کی دوری پر استھت ہے. یہ نگر سمندر کی سطح سے 1333 میٹر کی اونچائی پر استھت ہے. تربت حیدریہ کا چھیتر فل 53 وگ کلومیٹر ہے.
تربت حیدریہ نگر زعفران یا کیسر کی کھیتی کا کیندر بھی ہے. ایران کے اس نگر میں سب سے ادھک زعفران پیدا ہوتا ہے. تربت حیدریہ ضلع میں پرتی ورش لگ بھگ 150 ٹن کیسر کا اتپادن ہوتا ہے اور اس پرکار یہ وشو کا سب سے ادھک کیسر اتپادن کرنے والا ضلع ہے اور خوراسان میں یہاں سب سے ادھک پستہ پیدا ہوتا ہے. پرانت کی ارتھ ویوستھا میں اس ضلع کی وشیش بھومیکا ہے. تربت حیدریہ میں پرتی ورش 150 ٹن سوکھے کیسر کا اتپادن ہوتا ہے اور اس پرکار یہ دنیا میں سب سے ادھک کیسر پیدا کرنے والا علاقہ ہے. ایران میں 150 سے 170 ٹن کیسر کا اتپادن ہوتا ہے. تربت حیدریہ ضلع میں 90% کیسر پیدا ہوتا ہے. ایران بڑی ماترا میں کیسر جرمنی, اٹلی, کینیڈا, بھارت, لگزمبرگ, جاپان, برٹین اور فارس کی کھاڑی کے عرب دیشوں کو نریات کرتا ہے. علاقے میں کیسر اور پستے کے اتپادن کے کارن ان سے سمبندھت ادیوگوں کی بھی یہاں پر استھاپنا ہوئی ہے. اس ضلع میں 98 کارخانے اور 19 سکریہ کھدانیں ہیں. تربت حیدریہ نگر میں 300 سے ادھک ایتیہاسک اوشیش پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر پریٹن کو بڑھاوا ملا ہے۔ ان 300 ایتیہاسک اوشیشوں میں سے 50 کو ایران کے راشٹریہ دھروہروں کی سوچی میں شامل کیا جا چکا ہے۔
تربت حیدریہ نگر کے ارد گرد کی گئی کھدائی میں ایسی شکار گاہ کا پتہ چلا ہے جس کا سمبندھ عیسیٰ پورو چوتھی اور پانچویں شتابدی سے ہے۔ تربت حیدریہ ضلع کا اتہاس اسلام پور اشکانیان کال سے جا کر ملتا ہے۔ اس چھیتر میں کئی تتو درشیوں کی قبریں ہیں جن میں قطب الدین حیدر کا نام شامل ہے۔ چھٹی ہجری شتابدی میں عارف نامی کے ندھن کے بعد قطب الدین حیدر نے اس کا نام پریوارتت کر دیا۔ تربت حیدریہ کے راشٹریہ پارک کے نکٹ ہی تیمور کے بیٹے شیخ قطب الدین حیدر کا مقبرہ ہے۔ وہ شاہ سالوری کے ونشج تھے۔ ان کا سمبندھ ترک خاقان سے تھا۔ شیخ قطب الدین حیدر شیخ ابو القاسم سے بہت پربھاوت تھے۔ وہ جاوے میں رہا کرتے تھے۔ شیخ ابو القاسم سے ملاقات کرنے کے ادیش سے قطب الدین حیدر نے جاوے کی یاترا کی۔ سن 618 ہجری قمری میں ان کا ندھن ہو گیا۔
تربت حیدریہ شہر کے آباد ہونے کا اتہاس صفوی کال سے شروع ہوتا ہے۔ چھٹی ہجری شتابدی کال کے قطب الدین حیدر عارف کا مقبرہ بھی تربت حیدریہ شہر میں استھت ہے۔ یہ صفوی کال کی وراثت ہے۔ اس مقبرے کی عمارت میں اونچا برآمدہ اور گنبد کے نیچے کا ہال اور پرویش دوار ہے۔ اس کے باہری بھاگ میں کراس کے روپ میں نقاشی کی گئی ہے۔ شیخ کی قبر گنبد کے نیچے استھت ہے اور اس پر بنی ہوئی زری پر 987 ہجری قمری کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ انیک بار اس ایتیہاسک عمارت کا پنرنرمان ہو چکا ہے۔
تربت حیدریہ ضلع میں انیک ایتیہاسک دھروہر ہیں۔ انہیں میں سے ایک ابو سعید ابو الخیر کا مقبرہ بھی ہے۔ یہ قاجاری شاسن کال سے سمبندھت ہے۔ اسے ایران کی راشٹریہ دھروہر کی سوچی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ابو سعید فضل اللہ بن ابو الخیر چوتھی اور پانچویں ہجری شتابدی کے پرسدھ ایرانی کوی ہیں۔ رہسیہ وادیوں اور صوفیوں کے بیچ ان کا ایک وشیش استھان ہے۔ فارسی شاعری میں ان کا نام مولوی اور خیام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے بہت ادھک شعر نہیں کہے ہیں، کنتو رہسواد کے اتہاس میں ابو سعید کو حلاج، بائزید بستامی اور ابو الحسن خرقانی کے برابر مانا جاتا ہے۔ یہ وہی ہستیاں ہیں جنہیں سہراوردی نے پراچین درشن شاست کو آگے بڑھانے والا کہا تھا۔
تربت حیدریہ نگر 3 پروت شنکلاؤں سے گھرا ہوا ہے۔ ان پہاڑوں کے کارن نگر کی جلوایو بہت ہی منموہک ہے۔ اس نگر میں کچھ ایسے ستھل ہیں جن میں پریٹن اور ایکو ٹوریزم کے کارن وشیش آکرشن پایا جاتا ہے۔ تربت حیدریہ ضلع کی بھوگولک ستھتی کے کارن یہاں پر بہت ہی پراکرتک سندر درشیہ ہیں۔ تربت حیدریہ کے اتر میں کامے اولیا ادیان تتا حصار اور سنوور ندیاں اس ضلع کے پراکرتک سندر علاقے ہیں۔ شہر کے دیکھنے یوگیہ علاقوں میں سے نیشنل پارک اور پیشکو نیچر پارک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ تربت حیدریہ نگر جہاں پر ایران میں زعفران اور ریشم کے اتپادن کا کیندر ہے، وہیں پر یہاں بادام، پستہ، چقندر اور شکر کی پیداوار کی بہت ادھک سمبھاونائیں پائی جاتی ہیں۔ 23 پرکار کے ادھک کھنیجوں والے اس نگر میں بہت ہی سمردھ اور وودھ کھدانے ہیں۔ ان کھدانوں میں سب سے مہتوپورن سونے، سیمنٹ، لوہے اور سجاوٹی پتھروں آدی کی کھدانوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ تربت حیدریہ میں زر مہر سونے کی کھدان ہے۔ یہ ایران کی مہتوپورن سونے کی کھدان ہے۔
तुर्बत हैदरिया में कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धरोहर हैं। महापुरुषों की उपस्थिति, प्राचीन परंपराएं, स्थानीय संगीत, लोक कलाएं, स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक परिधान और इसी प्रकार की चीजों ने यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया है। यहाँ पर कई पारंपरिक कलाएं पाई जाती हैं, जिनमें दरियों की बुनाई, कालीन की बुनाई और पत्थरों पर उकेर कर की जाने वाली खुदाई आदि शामिल है। तुर्बत हैदरिया नगर की बनी हुई पारंपरिक चीजों को पर्यटक उपहार स्वरूप अपने घरों को ले जाते हैं। मूल्यवान आध्यात्मिक धरोहरों के अतिरिक्त तुर्बत हैदरिया में कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिनमें कुतुबुद्दीन हैदर ऐतिहासिक स्मारक, तबसी और लाजी नामा कारवानसरा, हाजी रईस हमाम, हैदर कतकनी मस्जिद और मकबरा, बुरियाबाद मज़ार, शेख अबुल कासिम गोरकानी का मकबरा, धर्मशालाएं, पारंपरिक बाजार और 40 प्राचीन घरों का उल्लेख किया जा सकता है। तुर्बत हैदरिया का राष्ट्रीय उद्यान 100 वर्षों से अधिक पुराना है। ये एक पहाड़ी पर स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में देवदार के ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं और इसमें रंग बिरंगे फूलों को भी देखा जा सकता है। इसकी गणना ईरान के सुंदर राष्ट्रीय उद्यानों में होती है। इस पार्क में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को प्रकृति के बहुत निकट पाता है। इसके निकट कुतुबुद्दीन हैदर और रिबात तवसी के मकबरे हैं और कुछ ही दूरी पर पुरानी जामा मस्जिद भी बनी हुई है। इन बातों के दृष्टिगत बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ जाते हैं।
तुर्बत हैदरिया नगर की ऐतिहासिक इमारतों में से एक तबस कारवानसरा भी है। ये कारवानसरा या धर्मशाला कुतुबुद्दीन हैदर के मकबरे के निकट स्थित है। इसका निर्माण काजार शासनकाल के जाने माने व्यापारी हाज मोहम्मद इब्राहिम तबसी ने करवाया था। इसमें दो बड़े हॉल हैं। इसके एक भाग को मानव विज्ञान संग्रहालय से विशेष कर दिया है। पर्यटकों के लिए ये बहुत ही आकर्षक स्थल है।
तुर्बत हैदरिया में बहुत से प्राचीन ऐतिहासिक घर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर हम उन सब के बारे में आपसे बात नहीं कर सकते। फिलहाल हम अमीनी नामक घर के बारे में बताएंगे। ये काजार काल की इमारत है। इस इमारत में तुर्बत हैदरिया के बहुत ही मशहूर व्यापारी अमीनुत्तुजार रहते थे। इस इमारत को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। इसमें टाइल्स और कच्चे चूने का काम किया गया है। बहुत अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज ये इमारत बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। 2009 में इस इमारत की मरम्मत सांस्कृतिक धरोहर संस्था ने कराई थी। वर्तमान समय में तुर्बत हैदरिया का सांस्कृतिक विरासत हस्तशिल्प और पर्यटन विभाग का इसमें कार्यालय है। तुर्बत हैदरिया के दक्षिण पश्चिम में नेचर पार्क पिशकू 800 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित है। इस पार्क में प्राकृतिक सुंदर दृश्यों के अलावा स्विमिंग पूल, झरना, टीले, रेस्टोरेंट और बच्चों के खेलने के विशेष स्थान इत्यादि हैं। इस पार्क में तीर्थयात्रियों और यात्रियों के विश्राम के लिए एक कैंप भी स्थित है। तो श्रोताओ, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें, خدا حافظ।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। नया सवेरा।
दोस्तों, कार्यक्रम नया सवेरा के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम अमरीकी नागरिक डेविड फिलिप के बारे में चर्चा करेंगे।
ईश्वर की स्पष्ट विशेषताओं में से एक विशेषता उसकी दया और कृपा है। वो अपने दासों के प्रति बहुत ही मेहरबान है। ईश्वर ही सृष्टि का रचयिता है। वही लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उनके विकास की भूमिका भी वही प्रशस्त करता है। पवित्र कुरान के एक सूरे को छोड़कर सारे ही सूरों की शुरुआत बिस्मिल्लाह से होती है, जिसका अर्थ होता है उस ईश्वर के नाम से जो अत्यधिक कृपालु और दयावान है। सूरह अनआम की 12वीं आयत के एक भाग में ईश्वर कहता है कि उसने अपने ऊपर दया को आवश्यक कर दिया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वो ईश्वर जिसने इस्लाम को मानवता के लिए भेजा है अत्यंत दयावान और कृपाशाली है।
डेविड फिलिप ईश्वर की दया और उसकी कृपा से बहुत प्रभावित हैं। इस अमरीकी नागरिक ने इसी आधार पर इस्लाम को अपनाया है। वे कहते हैं कि इस्लाम में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ईश्वर की कृपा है। हम इंसान इस बात को समझ ही नहीं सकते कि ईश्वर की कृपा कैसी और कितनी है। पवित्र कुरान में ईश्वर कहता है कि मेरी कृपा ने हर चीज़ को अपने घेरे में ले रखा है। जो भी मेरी कृपा को जितना महत्व देता है वो उससे उतना ही अधिक लाभ उठाता है। डेविड के अनुसार मैं समझता हूँ कि ये ईश्वर की कृपा ही थी जिसके कारण मैंने इस्लाम को स्वीकार किया। वे बहुत से उन धर्मों और विचारधाराओं को रद्द करते हैं जिनमें ईश्वर को बहुत ही भयानक एवं क्रोधित दर्शाया गया है। उनका मानना है कि ईश्वर का पूरा अस्तित्व ही कृपा का प्रतीक है।
अमरीकी नागरिक डेविड फिलिप ने इस्लाम को गले लगाने के बाद अपना नाम लतीफ रख लिया। डेविड का जन्म सन 1982 में न्यूयॉर्क में कैथोलिक ईसाई परिवार में हुआ। दूसरे अन्य बच्चों की ही भांति डेविड का भी झुकाव खेलकूद और मनोरंजन में था। इसके बावजूद उनके भीतर एक अन्य बात थी जो उनकी आयु के दूसरे बच्चों में कम ही देखी गई। डेविड में आरंभ से ही पढ़ाई और खोजबीन में विशेष लगाव था। इस बारे में वे कहते हैं कि मुझको शुरू से पढ़ने लिखने और शोध कार्यों का शौक था। अपने इर्द गिर्द घटने वाली घटनाओं से मैं निश्चेत नहीं था। डेविड फिलिप का कहना है कि मैं समझता हूं कि शायद मेरी यही आदत मुझको इस्लाम तक ले आई। इस बात के लिए मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ।
दोस्तों, ये भी एक वास्तविकता है कि जिन लोगों ने इस्लाम को अपनाया उनमें से बहुत से वे लोग थे जिन्होंने पहले लंबे समय तक अध्ययन और शोध किया, फिर उसके बाद वे मुसलमान बने। डेविड ने भी इस्लाम के बारे में पहले बहुत अधिक गहन अध्ययन किया। इसी दौरान उनके किसी दोस्त ने उन्हें कुरान की एक प्रति दी जिसका उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि मैंने कुरान को शुरू से आखिर तक पढ़ा, मुझे इसमें कहीं भी विरोधाभास नहीं दिखाई दिया। डेविड कहते हैं कि कुरान पढ़कर मुझे बहुत से सवालों के जवाब मिल गए। मैंने कुरान को एक बार नहीं बल्कि 7 बार पढ़ा। اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن شت پرتیشت صحیح ہے۔ لطیف کہتے ہیں کہ قرآن واسطو میں مارگ درشن کی کتاب ہے، یہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے میں پوری طرح سے سکشم ہے۔
پوتر قرآن سے اوگت ہونے کے بعد ڈیوڈ فلپ نے اوپچارک روپ سے اسلام کو گلے لگا لیا۔ بہت سے لوگوں نے ڈیوڈ کے مسلمان ہونے کا سواگت نہیں کیا۔ اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ پریاس رہتا ہے کہ وہ لوگ جو میری پسند کو مہتو نہیں دیتے ان سے میں نے دوری بنائی، جبکہ جنہوں نے میرے چین کو مہتو دیا ان کی میں عزت کرتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، وہ ہمارے دوست ہیں۔ میں نے اسلام کو سوچ سمجھ کر اپنایا ہے۔
ڈیوڈ کہتے ہیں کہ لطیف بننے کے بعد میرے سامنے کئی کشتیج نظر آنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو اپنانے کے بعد میرے بھیتر جو سب سے بڑا پریورتن آیا وہ میری وچار دھارا میں آیا بدلاؤ تھا۔ اب دنیا کے بارے میں میرا درشٹی کون بدل چکا ہے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ منشیہ اس کے جیون اور جیون کے انت کے بعد کی دنیا میں ایک سمپرک پایا جاتا ہے۔ پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ دنیا بہتر ہے یا مرنے کے بعد کا جیون۔ مسلمان بننے سے پہلے میں اس بارے میں بہت ہی کم سوچتا تھا۔ اب میں ادھکانش اس بارے میں سوچتا رہتا ہوں کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے اور ہمارا کیا ہوگا۔
ڈیوڈ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی بار جو نماز پڑھی تھی وہ مجھ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے میرے بھیتر بہت ویاکلتا تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا میں نماز پڑھ بھی پاؤں گا یا نہیں، لیکن جب میری نماز ختم ہو گئی تو مجھ کو جو سنتوش اور شانتی حاصل ہوئی اس کا ورنن میں شبدوں میں نہیں کر سکتا۔ اب مجھ کو نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ڈیوڈ کہتے ہیں کہ رمضان کے پوتر مہینے میں کلمہ پڑھ کر میں مسلمان بنا تھا، اس لیے میں نے نماز اور روزہ ایک ساتھ شروع کیا۔ پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ روزہ رکھنا بہت کٹھن کام ہے، کنتو جب میں نے روزہ رکھا تو یہ مجھ کو بہت کٹھن نہیں لگا، بلکہ اس سے مجھ کو بہت آنند پراپت ہوا۔ اب میں پرتی دن نماز پڑھتا ہوں اور رمضان کے سارے روزے رکھتا ہوں۔
فلپ ڈیوڈ سے لطیف بننے والے امریکی ناگرک کا کہنا ہے کہ ایشور کے کرپالو ہونے کے بعد جس چیز نے مجھے بہت ادھک پربھاوت ایوم آکرشت کیا ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پوتر پریجنوں کا جیون اور ان کے کتھن ہیں۔ اس سمبندھ میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اسلام کو جاننے کے لیے جب میں ادھیان کر رہا تھا تو میں نے اس بارے میں کچھ سنا تو سوچا کہ کچھ وستار سے مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ بعد میں جب کچھ لوگوں سے میں نے اس بارے میں جاننا چاہا تو ان کے جوابوں سے میں سنتشٹ نہیں ہو پایا۔ بعد میں میرے ایک دوست نے مجھے نہج البلاغہ نام کی ایک کتاب دی، میں نے اسے پڑھا۔ اس کتاب کو پڑھ کر میرے من میں کئی پرکار کے سوال اٹھے جن کے میں جواب جاننا چاہتا تھا۔ پھر اپنے اسی دوست کی مدد سے میں ایک دھرم گرو سے ملا جنہوں نے میرے کئی سوالوں کے جواب دیے اور پیغمبر اسلام تتھا ان کے پوتر پریجنوں کے بارے میں وستار سے بہت سی باتیں بتائیں۔ اب مجھے پیغمبر اسلام تتھا ان کے پوتر پریجنوں کے بارے میں بہت کچھ گیات ہو چکا تھا۔
ڈیوڈ کہتے ہیں کہ دھرم گرو کی باتیں سننے کے بعد میں سب سے ادھک پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین علیہ السلام سے پربھاوت ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کتھن سن کر میرے من میں ان کے پرتی ادھک سمان بڑھ گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد مومنوں کے من میں ایسی جوالا بھڑک اٹھے گی جو پھر کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ وہ کربلا کی گھٹنا کو ایک بہت بڑی تراسدی بتاتے ہیں۔ ڈیوڈ کے انوسار امام حسین کی شہادت کے بعد ان کی یاد میں منائے جانے والے کارکرموں میں میں نے بھاگ لیا، کنتو سب سے آکرشک کارکرم مجھ کو ان کے چہلوم کا کارکرم لگا، جس میں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ اکترت ہو کر کربلا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوئم اس کارکرم میں بھاگ لیا اور کئی میل کی پد یاترا کی۔ ڈیوڈ کے انوسار یہ کارکرم ہمیں منوبل دیتا ہے، لاکھوں کی سنکھیا میں لوگوں کو دیکھ کر من میں ڈھارس بڑھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اربعین کا کارکرم سچے اور کرانتیکاری لوگوں کے اکترت ہونے کا سب سے سنہرا افسر ہے۔ تو متروں، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، آپ سے انومتی چاہتے ہیں۔
دوستو، ابھی آپ نے کاریکرم نیا سویرا سنا، اور اب آپ مکھیہ سماچاروں کا سارانش ایک بار پھر سے سن لیں۔ ودیش منتری نے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے یوروپی دیش نسل بھید اور سمجھوتے کے الگن سے باز رہیں۔ تیرا نے کہا ہے کہ آئی اے ای اے ایران کے پرمانو کاریکرم کی جانکاریوں کی سرکشا کی ذمہ دار ہے۔ ایران میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے لگ بھگ 12,000 نئے معاملے سامنے آئے، جبکہ 300 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی۔ بھارت کی سرکار نے اسپشٹ کر دیا ہے کہ کرشی قانونوں کو واپس نہیں لیا جائے گا، جبکہ کسان اپنی اسی مانگ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ یہ صفحہ یہیں پر سماپت ہوتی ہے۔ مریم مہرزادی کو انومتی دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.